समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
आज सवेरे में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दोस्तों, आपकी प्रिय समाचार पत्रिका आज सवेरे में हम आपको देंगे देश और दुनिया के समाचार, महानगरों का जानेंगे हाल, मौसम की भी होंगी बातें और इतिहास में दर्ज कुछ ऐसी घटनाओं का करेंगे जिक्र जो बना देती आज की इस तारीख को और खास। और हम याद करेंगे ऐसी जानी मानी हस्तियों को भी है जिनका रिश्ता आज की इस तारीख से। आज सवेरे के संग के साथ दोस्तों मैं हूं मुनीश शर्मा और मेरे साथ हैं रेणु कटारिया। नमस्कार रेणु।
नमस्कार मुनीश, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग यू डियर लिसनर्स एज मुनीश हैज ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, वेयर इन वी आर गोइंग टू गिव यू द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे, दैट इज द 27th of March. And but before all that, let's begin with the news first, Munish.
जी हाँ, सबसे पहले मुख्य समाचार। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की तत्परता, शांति रक्षक अभियानों को व्यवस्थित करने और मानव आपूर्ति श्रृंखलाओं के सशक्तिकरण का उल्लेख किया। ये बैठक फ्रांस में हो रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने वैश्विक शासन में सुधार को लेकर भी बातचीत की।
इन नेपाल राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी RSP लीडर बालेंद्र शाह विल बी स्वोन इन एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल टुडे। द स्वेरिंग इन सेरेमनी विल बी हेल्ड एट द प्रेसिडेंट्स ऑफिस इन शीतल निवास इन काठमांडू एट 12:34 PM लोकल टाइम। बालेंद्र शाह वॉज इलेक्टेड एज द लीडर ऑफ द RSP पार्लियामेंट्री पार्टी येस्टरडे, paving his way to become Nepal's youngest elected prime minister. His party RSP secured a landslide victory in the March 5th parliamentary poll. The 35-year-old rapper turned politician will be the first person also from the Madhes region to hold the top executive post in the country.
और उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 6 अप्रैल तक होर्मुज जल डमरू मध्य को खोलने की चेतावनी दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कल सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वो ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर फिलहाल बमबारी नहीं करेंगे, लेकिन इस बीच हजारों अमरीकी सैनिक क्षेत्र के करीब पहुंच रहे हैं। उधर ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। दूसरी तरफ इसराइल ने हिजबुल्ला से लड़ने के लिए दक्षिणी लेबनन में और अधिक सैनिक तैनात किए हैं और इसराइल में लगातार हवाई हमलों के सायरन सुनाई दे रहे हैं।
The Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, has pegged India's GDP growth rate at 7.6% for 2025-26, 6.1% for 2026-27 and 6.4% for 2027-28, with the country remaining the world's fastest growing major economy. The OECD's interim economic outlook report states that conflict in the Middle East is testing the resilience of the global economy. The halt in shipments through the Strait of Hormuz and the closure and damage of some energy infrastructure have generated a surge in energy prices and disrupted the global supply of energy and other important commodities such as fertilizers. This is raising cost, weighing on demand and adding to inflationary pressures.
रामनवमी का पावन त्योहार आज पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया जा रहा है। उत्सव का मुख्य आकर्षण है अयोध्या, जहां श्री राम जन्मभूमि मंदिर में सूर्य स्नान होगा, जिसका सीधा प्रसारण किया जाएगा दूरदर्शन पर। एक रिपोर्ट।
भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मन।
लोग विभिन्न मंदिरों में भगवान राम के दर्शन करने से पहले सरयू नदी और राम की पैड़ी में स्नान कर रहे हैं। भगवान राम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में अयोध्या के 5,000 से अधिक मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में सुबह भगवान राम के अभिषेक के बाद ठीक दोपहर 12 बजे गर्भगृह में सूर्य तिलक होगा, जब सूर्य की किरणें लगभग 4 मिनट तक रामलला के माथे पर पड़ेंगी। ये एक दिव्य और ऐतिहासिक क्षण होगा। इसके बाद 56 भोग प्रसाद चढ़ाए जाएंगे। आज शाम चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के किनारे एक और भव्य आयोजन होगा, जहां राम नवमी के उपलक्ष्य में लगभग 22,00,000 दिए जलाए जाएंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
In Keralam, final voters list for the coming assembly elections was published last night. More from our correspondent.
As per the final electoral roll, Keralam has a total of 2,71,42,952 voters. The list also includes 4,66,408 new voters under the age of 19. Notably, there are 54 voters above the age of 110 years in Keralam. With the publication of the final voters list, including those who became eligible after the SIR and the completion of the nomination withdrawal process, Keralam is all set for a high voltage election campaign. Smithy M. Palliruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप में कल वर्तमान चैंपियन भारत ने पाकिस्तान को 3-0 से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की और इस जीत के साथ ही भारत ने चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। पाकिस्तान प्रतियोगिता से बाहर हो गया है। भारत ने तीसरे मिनट में विशाल यादव के गोल से बढ़त हासिल की। प्रतियोगिता में कल ग्रुप बी के सेमीफाइनल मुकाबले में भारत का सामना बांग्लादेश से होगा।
As part of our series People's Padma on Akashvani, in our upcoming episode, we speak to Shri Mahendra Kumar Mishra from Odisha. He will be honored with Padma Shri for his contributions in the field of literature and education.
मेरा बचपन आदिवासी बच्चों के साथ खेलते हुए जो अपॉर्चुनिटी मिला, जो देखने को मिला, जो खेलने कूदने नाचने को मिला आदिवासी दोस्तों के साथ, वो मेरे आदिवासी लोक संगीत, लोक नृत्य और लोक साहित्य की ओर प्रेरित किया। 1984 से 1992 तक मैंने कालाहांडी के ऊपर रिसर्च किया, उसके ऊपर PhD किया, लेकिन PhD के साथ मेरा रिसर्च कभी बंद नहीं हुआ। दूसरों से टेप रिकॉर्डर मांगता था, मेरे दोस्तों से कैमरा मांगता था, वहाँ कैमरा और टेप रिकॉर्डर का रील लगाकर 5-7 दिन के लिए जंगल को जाता था, रिकॉर्डिंग करता था, आने के बाद उसको फिर मैंने ट्रांसक्राइब करके मैं उसको रखता था। ऐसे काफी गीत और कहानी है जिसको कि हम सुन के उसको अपनाया, उसका अर्थ निरूपण किया, उसका विश्लेषण किया और विश्लेषण करके उसके ऊपर किताब लिखा।
To listen to the conversation, tune into 100.1 Akashvani Gold today morning at 9:10 a.m. You can also listen to it on News On Air app and News On Air official YouTube channel.
और दोस्तों, अब रुख करते हैं महानगरों का और जानते हैं क्या कुछ है खास वहां। तो सबसे पहले बात दिल्ली की। दिल्ली सरकार ने कमर्शियल LPG को लेकर जानकारी दी है कि राजधानी में LPG की कोई कमी नहीं है और उसकी आपूर्ति को 20% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। खाद्य और आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि इसके अंतर्गत अब प्रतिदिन 1,800 की जगह 4,500 सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सरकार के अनुसार यह फैसला केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशों के तहत लिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे होटल, रेस्तरां, उद्योग और जरूरी सेवाओं को भी बगैर किसी रुकावट के गैस मिलती रहेगी। दिल्ली में 13 प्रमुख रेलवे स्टेशनों का अमृत भारत योजना के तहत तेजी से आधुनिकीकरण किया जा रहा है। ये जानकारी अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में सांसद रामवीर सिंह बिधूरी के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। रेल मंत्री ने बताया कि जिन स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है उनमें है नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, आनंद विहार, सराय रोहिल्ला, दिल्ली कैंट, हजरत निजामुद्दीन, सब्जी मंडी, सफदरजंग, तिलक ब्रिज, आदर्श नगर, बिजवासन और नरेला। और दिल्ली सरकार के नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो NCB दिल्ली ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जब्त किए गए नशीले पदार्थों को बड़े पैमाने पर निस्तारित किया है। एनसीबी के अनुसार इस दौरान लगभग 408 किलोग्राम नशीले पदार्थ को नष्ट किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 212 करोड़ रुपए है। और इसमें शामिल है 121 किलोग्राम से अधिक गांजा, करीब 30 किलोग्राम कोकीन, लगभग 14 किलोग्राम हेरोइन और 27 किलोग्राम चरस।
And moving on to Chennai, the digital time vouchers have been allotted to all recognized national and state political parties in Tamil Nadu in accordance with the guidelines of the Election Commission of India in the presence of Chief Electoral Officer Tamil Nadu. These vouchers facilitate access to the recognized political parties for their allotted broadcast time on Doordarshan and Akashvani for campaigning. All political parties are requested to utilize the allotted time strictly in compliance with the provisions of the Model Code of Conduct and the extant instruction issued by the Commission.
Aur baat ab Mumbai ki. मुंबई विश्वविद्यालय ने समुद्री अध्ययन और खेल विज्ञान के क्षेत्रों में सहयोग के लिए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता दोहरी डिग्री कार्यक्रमों, संयुक्त अनुसंधान और प्रशिक्षण पहलुओं को सुगम बनाएगा। समुद्री अध्ययन में महासागर विज्ञान, तटीय पारिस्थितिकी तंत्र, समुद्री जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और सतत संसाधन प्रबंधन जैसे क्षेत्रों पर ध्यान भी केंद्रित किया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग और बाल निवेश कोष फाउंडेशन की साझेदारी से राज्य में मातृ एवं शिशु पोषण के संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार होगा। इस पहल के तहत प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना जैसी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र महिलाओं तक पहुंचाया जाएगा।
Moving on to Bengaluru, monthly water bills in Bengaluru city are set to increase by 3% from 1st of next month as Bangalore Water Supply and Sewerage Board rolls out its new policy for annual tariff hikes to offset rising operational costs. The increase comes just a year after a steep 32% revision in water tariffs, which was implemented after a gap of 12 years with state government approval. In the same notification issued last year, the board had also announced a system of automatic 3% yearly hikes starting April 1st.
और ये खबर मिली है हमें कोलकाता से। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रविन्द्र नारायण रवि ने कल BSF की पूर्वी कमान के प्रमुख सुमित चरण के साथ बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा की स्थिति और चुनावों में बल की भूमिका पर चर्चा के लिए एक बैठक की। कोलकाता के लोक भवन में आयोजित बैठक में सीमा सुरक्षा की वर्तमान स्थिति, तैनाती योजनाओं और चुनावों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए BSF की तैयारियों पर भी विस्तृत बातचीत हुई। राज्यपाल ने BSF की तैयारियों के स्तर पर संतोष व्यक्त किया है। राज्य के पिछले चुनावों में हुई राजनीतिक हिंसा के संदर्भ को उजागर करते हुए राज्यपाल ने जनता का विश्वास कायम करने और असामाजिक गतिविधियों के विरुद्ध एक मजबूत निवारक स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया। BSF ने आश्वासन दिया है कि वो पूरी तरह तैयार है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पूरा सहयोग प्रदान करेगी।
And the last news that I have is from Hyderabad. Telangana Chief Minister Revanth Reddy has announced a special policy for the effective utilization of corporate social responsibility funds from industries operating in the state. Chairing a review meeting at the Legislative Council Conference Hall in Hyderabad yesterday, the Chief Minister said, the government will establish a dedicated state-level CSR cell with a separate office responsible for coordinating CSR initiatives and identifying suitable projects across government departments. A dedicated Telangana CSR portal has also been approved to serve as a bridge between the government and corporate entities, allowing companies to easily select projects aligned with their interest. To encourage higher contributions, annual felicitation ceremonies for top CSR contributors will be held as part of State Formation Day celebrations.
और दोस्तों आज सवेरे में अब बात महानगरों के मौसम की। राजधानी दिल्ली में आज आंधी के साथ बारिश की संभावना है। वहीं आज का अधिकतम तापमान रह सकता है 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास, जबकि मुंबई में आज मुख्यतः आसमान रहेगा साफ, न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम रह सकता है 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास, जबकि कोलकाता में आज तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है। जी हां, इसलिए तैयार होकर निकलिए, छाता रखिए अपने पास। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम रह सकता है 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास। रेनु,
यस, एंड चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई। The minimum temperature was 25 degrees Celsius and the maximum will be around 35 degrees. Bengaluru is expected to have partly cloudy sky. The minimum temperature was 21 degrees Celsius and the maximum will be around 34 degrees. Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The temperature will hover between a minimum of 23 degrees and a maximum of 37 degrees Celsius.
और दोस्तों अब जानते हैं कौन सी हैं वो खास बातें जो बनाती हैं इस तारीख को यानी 27 मार्च को कुछ और भी खास।
बाबूशाय, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है, जहां पड़ा उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है।
And Munish, if we all have listened to this dialogue very carefully, the cue was hidden in what Rajesh Khanna was saying just now.
So, yeah, that's what, you know, makes it immortal. Immortal, yes. Lines from the movie Anand. Yeah.
And this, dear listeners, we played because today we are celebrating World Theatre Day, a celebration that highlights the importance of theatre as a timeless form of entertainment, a day dedicated to the magic of live performance, storytelling and pure human emotion. From grand stages to small street performances, theatre has always had one superpower: making us feel.
And listeners, as we all know, this immortal dialogue from the movie Anand was actually inspired by the lines of great bard William Shakespeare, who once said, "All the world is a stage and we are mere players." Dosto, theater sirf acting ki baat karne ki baat nahi hai, darasal ye insani jo fitrat hai, uska jo swabhav hai, uska ek aina ban gaya hai jo hamari bhavnaon, hamare sangharshon, rishton aur asliyaton ko darshata hai. Ye abhivyakti sanskriti aur judav ke bare mein hai. Filmon aur OTT platform se pehle theater hi to tha jo kahaniyon ko jeevant karta tha. Aur sabse achhi baat, हर परफॉर्मेंस लाइव होती है जिसमें कोई रीटेक नहीं होता, कोई एडिटिंग नहीं, बस प्रतिभा और उसी पल का एक जादू।
वेरी ट्रू मनीष, एंड अनलेस एंड अंटिल वी डोंट हैव दैट पर्सनल कनेक्ट, इट इज नॉट प्योर थिएटर। सो द पर्सनल कनेक्ट मेक्स इट मोर, मेकिंग अस फील इनटू व्हाट वी आर वॉचिंग। So, the International Theatre Institute initiated World Theatre Day 1961 with 27th of March as the date of the opening of the Theatre Nations season in 1962 Paris, and has been celebrated ever since. World Theatre Day also encourages young people to explore their creativity, engage with theatre and potentially pursue careers in the arts. It motivates the next generation to carry the torch forward and to keep the theatre community vibrant.
जी हाँ रेनु, और इसीलिए हमारे यहाँ भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो है वो हर साल लगभग इन्हीं दिनों के आसपास आयोजित करता है भारतीय रंग महोत्सव भी, और लोगों में दरअसल सहानुभूति को जगाने में थिएटर की एक अहम भूमिका होती है, जब दर्शक लाइव परफॉर्मेंस देखते हैं तो किरदारों से वो सीधे जुड़ जाते हैं, उनकी मुश्किलों, उनकी खुशियों और आपसी टकरावों से। और ये भावनात्मक जुड़ाव लोगों को असल जिंदगी की परिस्थितियों को और बेहतर समझने में मदद करता है। अब बात करें अगर फिल्मों की, जो कि दरअसल एक तरह से विस्तार है, एक्सटेंशन है थिएटर का, तो आप जानते हैं कि थिएटर ही दरअसल भारतीय सिनेमा की रीढ़ रहा है। और कई दिग्गज अभिनेताओं ने फिल्मों में आने से पहले रंगमंच पर की थी अपने करियर की शुरुआत।
Exactly, Munish. Theatre provides actors with strong fundamentals like dialogue delivery, body language, timing, and emotional expression. These skills are essential for creating impactful performances in films. Moreover, theatre influences storytelling in Bollywood. The dramatic structures, powerful scripts, and character depth we see in films often have roots in theatrical traditions.
और दोस्तों, यहाँ तक कि निर्देशक और लेखक भी थिएटर की तकनीकों से बहुत कुछ सीखते हैं, चाहे वो स्टेज ब्लॉकिंग हो, सीन की बनावट हो, या फिर जोरदार मोनोलॉग। थिएटर अनुशासन और असलियत सिखाता है, जो बड़े पर्दे पर बड़ी खूबसूरती से उभर करके आता है। और एक तरह से थिएटर एक ट्रेनिंग ग्राउंड का काम करता है, एक ऐसी जगह जहाँ कच्ची प्रतिभा को फिल्मों में चमकने से पहले तराशा जाता है। चाहे इसीलिए वो लोगों को गढ़ना हो या सिनेमा को समृद्ध बनाना, थिएटर एक ऐसी कला है जिसकी जगह कोई और ले नहीं सकता।
Very, very well described, Munish. So now let us move on to the other events in history. Let's begin with, I think, 1721.
जी, 1721 में यही थी वो तारीख, यानी 27 मार्च, जब फ्रांस और स्पेन ने मैड्रिड समझौते पर किए थे हस्ताक्षर।
जी,
और 1794 में इसी तारीख को अमरीकी कांग्रेस ने देश में नौसेना की स्थापना को अपनी स्वीकृति दी थी।
In 1841, the first U.S. steam fire engine was tested in New York City. In 1849, Joseph Couch patented the steam-powered percussion rock and drill on this day.
और 1855 में 27 मार्च ही थी दोस्तों वो तारीख जब अब्राहम गैसनर ने केरोसीन यानी मिट्टी के तेल का पेटेंट कराया। और 1871 में पहला अंतर्राष्ट्रीय रग्बी मैच स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच खेला गया।
And the Bharat Ratna, India's highest civilian award, was conferred on former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee on this day in 2015. And on this day in 2019, India successfully executed Mission Shakti, an anti-satellite missile test that destroyed a low Earth orbit satellite. This achievement made India the fourth country after the US, Russia and China to possess this capability, marking it a significant step in national defense.
तो ये भी नहीं भूला जा सकता है, जब बात हो 27 मार्च की, कि 1899 में इतालवी आविष्कारक जी मार्कोनी द्वारा फ्रांस और इंग्लैंड के बीच किया गया था पहला अंतर्राष्ट्रीय रेडियो प्रसारण। और दोस्तों, अब याद करते हैं कुछ ऐसी जानी मानी हस्तियों को है जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन। तो शुरुआत करें रेनु
जी। बिल्कुल, टुडे इज द बर्थडे ऑफ क्वेंटिन टैरेंटिनो, हु इज एन अमेरिकन फिल्म मेकर, एक्टर, फिल्म प्रोग्रामर एंड सिनेमा ओनर। हिज फिल्म्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय नॉन लीनियर स्टोरी लाइन, सेटोरिकल सब्जेक्ट मैटर, एक्सटेंडेड सीन्स ऑफ डायलॉग, एनसेंबल कास्ट, रेफरेंसेस टू पॉपुलर कल्चर एंड अ वाइड वैरायटी ऑफ अदर फिल्म साउंड ट्रैक्स, प्राइमरली कंटेनिंग सॉन्ग्स एंड स्कोर पीसेस फ्रॉम द 1960s टू द 1980s. And here we are going to listen to Quentin Tarantino sharing which of his film holds a special place in his heart as his personal favorite. So here, let's listen to him revealing his favorite movie he ever made.
Do you look back on your career and say, this is the defining movie of my life? It's the best I did.
For years, people used to ask me stuff like that, and then I would usually say something, well, they're all like my children, and da-da-da-da-da-da. Then I would change it to, well, it kind of depends on when you ask me. If you ask me 1 year or one moment, I could say, oh, Kill Bill. Another one, I could say something else. But I really do think Once Upon a Time in Hollywood is my best movie.
Why do you watch your own movies back?
I love them.
You love them.
I love my movies. I'm making them for me. Everybody else is invited, all right?
और दोस्तों आज ही है पुण्यतिथि विमान चालक और अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन की। वे 12 अप्रैल 1961 को अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति बने। यूरी गागरिन का जन्म हुआ था 9 मार्च 1934 को तत्कालीन सोवियत संघ में। उन्होंने पृथ्वी का एक चक्कर लगाकर अंतरिक्ष में मानव उड़ान के युग की शुरुआत की।
Today is the birthday of Ram Charan, who is an Indian film actor, producer and entrepreneur who works in Telugu cinema. He is one of the most popular and influential actors in Tollywood and has featured in Forbes India's Celebrity 100 list since 2013. He has been a recipient of several awards, including 2 Filmfare Awards, 2 Nandi Awards, 2 Cinema Awards and 2 Santosham Best Actor Awards. But here, dear listeners, the song that we are going to listen to, which featured Ram Charan, Natu Natu, became the first Indian and the first Asian song to win the Academy Award for Best Original Song and also the first Indian song to win the Golden Globe Award for Best Original Song. It also won the Critics' Choice Award for Best Original Song. So let's listen into this beautiful song.
పొలం గట్టు దుమ్ములో న పోట్ల గిత్త దూకినట్టు పొలే రమ్మ జాతరలో పోత రాజూగినట్టు కిర్రు చెప్పులేసుకొని కర్ర సాము చేసినట్టు మర్రి సొట్టు నీడలోన కుర్ర గుంపు కూడినట్టు ఎర్ర జొన్న రొట్టెలోన నిలప దొక్కు కలిపినట్టు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నాటు 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 వీర నాటు 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 కూర నాటు
दोस्तों एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं आज सवेरे और हम याद दिला रहे हैं आपको आज है पुण्यतिथि भारतीय हिंदी सिनेमा की अभिनेत्री प्रिया राजवंश की। प्रिया राजवंश ने निर्माता निर्देशक चेतन आनंद की कई फिल्मों में अभिनय किया। इनका जन्म हुआ था 1937 में शिमला हिमाचल प्रदेश में और पूरा नाम था वेरा सुंदर सिंह। शुरुआती पढ़ाई हुई शिमला में ही और बचपन से ही कला में रुचि थी। यही वजह थी कि पढ़ाई के दौरान नाटकों में हिस्सा लिया। इनके पिता वन विभाग में संरक्षक थे, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से ब्रिटेन गए तो उनके साथ प्रिया भी पहुंच गई लंदन और वहां उन्होंने मशहूर रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में एडमिशन लिया और फिर किया कुछ हिंदी फिल्मों में काम, जिनमें खास रही हकीकत, हीर रांझा, हंसते जख्म, हाथों की लकीरें, कुदरत, साहब बहादुर और हिंदुस्तान की कसम। तो क्यों ना रिनू जी सुने जाएं उन्हीं की कुछ यादगार फिल्मों के गीतों के अंश।
क्यों नहीं।
मैं
दोस्तों अब अनुमति दीजिए कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की और आज्ञा दें रेणु कटारिया और मनीष शर्मा को आप सुन रहे हैं आज सवेरे आप हमें लॉग इन कर सकते हैं वेबसाइट पर चाहे तो दोबारा सुनने के लिए
एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन डियर लिसनर्स हैव अ सुपर्ब डे
नमस्कार